हरे कृष्णा। श्री कृष्ण मल्ला मंदिर स्कान वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, भगवत गीता के भक्ति शास्त्री अध्ययन के अंतर्गत विश्व रूप दर्शन नाम 11वें अध्याय के 9वें श्लोक से संजय अर्जुन के विश्व रूप दर्शन का वर्णन कर रहा है। ये 31 श्लोक तक वर्णन चलेगा। संजय वाचा एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्श्यामास पार्थाय परमं रूपं ऐश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजन, एवं उक्त्वा, इस प्रकार भगवान ने कहा कि मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। कृष्ण जो योगेश्वर है, हरि हरि कृष्ण जो योगेश्वर है, अर्जुन को उन्होंने ततो पार्थ दर्श्यामास दिखाया। क्या दिखाया? परम रूपम ऐश्वरम, बड़ा ऐश्वर्य वाला परम रूप दिखाया। ये 6 जो श्लोक है, 9 से 14 तक, ये 9 से 14 तक जो ये 6 श्लोक है, इसमें संजय जो अर्जुन कह रहा है कृष्ण को, उसको वर्णन कर रहे हैं। इसको ऐसे कह, कृष्ण को देख के अर्जुन बोल रहा है, लेकिन हमको संजय सुना रहे हैं कि अर्जुन कृष्ण को ऐसे कह रहे हैं। ततः अर्जुन को दिव्य दृष्टि देने के उपरांत, हे महाराज धृतराष्ट्र, क्योंकि संबोधन संजय किसको कर रहे हैं? धृतराष्ट्र को। हे महाराज धृतराष्ट्र, योगेश्वर भगवान श्री हरि ने अपना ऐश्वर्य रूप अर्जुन को दिखाया। इसका तात्पर्य नहीं है, नहीं है ना? आइए 10वां और 11वां श्लोक पढ़ते हैं। अब ये बोल कौन रहा है? ये देख रहा है अर्जुन और कह रहा है कृष्ण को, वर्णन कर रहा है संजय धृतराष्ट्र को। अनेक वक्त्र नयनम् अनेक अद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्यानेको द्योत अयुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवं अनंतं विश्वतो मुखं। दो शब्द बार बार आया, एक अनेक आया है, एक दिव्य आया है। तो अनेक पहले, अनेक वक्त्र, वक्त्र कहते हैं मुख को और नयन कहते हैं आंखों को। अनेक मुख देखे और अनेक आंखें देखी। अनेक अद्भुत दर्शनम, और ये सब दर्शन अनेक थे और अद्भुत थे। और फिर है अनेक दिव्य आभरणम। आभरण कहते हैं जो दिव्य आभरण, आभरण कहते हैं जो 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 जेवर पहनते हैं, जो आभूषण पहनते हैं, वो सारे दिव्य थे और अनेक थे। अनेक दिव्य आभरणम दिव्या ने अनेक उद्य आयुधम, और ऐसे हाथों में ऊपर उठाए उठाए उद्य, ऊपर उठाए उठे अनेक आयुध थे। आयुध का मतलब हथियार। तो दो शब्द होते हैं, एक अस्त्र एक शस्त्र। अस्त्र होता है मंत्र से उत्पन्न होने वाला, जैसे ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, और धनुष शस्त्र है। शस्त्र होता है हथियार जो दिखता है, अस्त्र मंत्र से उच्चारण होता है वो अस्त्र, जैसे ब्रह्मास्त्र अग्नेय अस्त्र। तो ये अस्त्र है और शस्त्र अलग है। अस्त्र शस्त्र दो शब्द हैं। तो आधुनिक संसार को अस्त्र का वर्ण पता नहीं है, सिर्फ शस्त्र के ऊपर ही झगड़ा चल रहा है। तो ये आयुध का मतलब शस्त्र जो हाथ में उठाए हैं। दिव्य माल्याम वरधरम, दिव्य माला भगवान ने धारण की हुई थी। दिव्य गंधानुलेपनम, बहुत सुंदर दिव्य चंदन उग्रु आरी भगवान को लेपन था ललाट के ऊपर अन्य जगहों पे। सर्वाश्चर्यम वयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम, चारों ओर दसों दिशाओं में उनके मुख थे और ये सर्व आश्चर्यमयम देवम, ये आश्चर्यमय था देव। हाँ, माल्याम अंबर, माल्या और अंबर दो शब्द है, माल्या माला है, अंबर वस्त्र है, अंबर के जैसे पीतांबर, पीता अंबर, अंबर का मतलब वस्त्र, पीत मतलब पीला, तो माल्या के साथ अंबर है, दो चीजें हैं, माला पहनी हुई है, अंबर पहने हुए हैं और बहुत सुंदर सुगंधित दिव्य माल्याम वरधरम दिव्य गंधानुलेपनम और अनंत दिशाओं में भगवान के मुख हैं। यह केवल मुख और आंखों का वर्णन है, आगे वाले श्लोक में आएगा अनेक भुजाएं भी हैं और अनेक भगवान के सभी अनेक सहस्र बाहो भविष्व मूर्ते अर्जुन कहेगा। तो यहां अनेक कहने से उनके आंखें, उनके भुजाएं, इन सब का वर्णन है, उनकी गिनती नहीं की जाती। और इसके बाद है श्रुति में लिखा है, श्रुति में क्या लिखा है, श्रुति ने लिखा है विश्वतश्चक्षो उतः विश्वतः उम्मुख विश्वतो मुखः, उनकी आंखें सर्वत्र है, उसके मुख सर्वत्र है, ये श्रुति कहती है श्वेताश्वर उपनिषद में। तो ऐसे अनेक अद्भुत दर्शन किए अर्जुन ने। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं दो श्लोकों में बार बार जो है, एक तो शब्द आया है अनेक, हा? तो अनेक भगवान के हाथ हैं, मुख हैं, जांघे हैं, अर्जुन ने ये सब देखा। और ये कहाँ थे, सारे विश्व में, सारे विश्व में विस्तृत विस्तृत थे, सब जगह विस्तृत थे, फैले हुए थे, परंतु भगवान की कृपा से अर्जुन उसको एक जगह बैठे हुए देख सकता था। और ये कैसे संभव था, प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, भगवान की अचिंत्य शक्ति से। उसके लिए दूसरा शब्द हमने कौन सा पहले सीखा है, योग ऐश्वरम, क्योंकि आगे कहा है भगवान योगेश्वर ने दिखाया, तो योगेश्वर भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा अर्जुन को ये सब दर्शन कराया। बारहवां श्लोक, देवी सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपत उथिता यदि भा सदृशी सास्यात् भासस्तस्य महात्मनः। तो कहते यदि भा, भा का मतलब प्रभा, प्रभा का मतलब प्रकाश, एक क्षेत्र है उसका नाम है प्रभास क्षेत्र, सुना है, सांदीपनि मुनि के लड़के को ढूंढने गए थे कृष्ण प्रभास क्षेत्र में, आज प्रभास क्षेत्र किस सोमनाथ के, सोमनाथ प्रभास क्षेत्र में ही है और उसके पास में कृष्ण की यदुवंश के संहार की लीला वही हुई है, यदुवंश संहार लीला वहाँ हुई है, त्रिवेणी तीर्थ वहाँ है, भगवान बलराम जी का पाताल में जाने का स्थान वहाँ है, उद्धव को जो भगवान ने उपदेश दिया है वो स्थान वहाँ है, और भगवान जहाँ से अपने धाम गए हैं वो बावल तीर्थ भी वहाँ है। परंतु उसको प्रभास क्षेत्र इसलिए कहते हैं कि चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप मिला था, तो वहाँ समुद्र में स्नान करके और शंकर जी का दर्शन करता है तो फिर उसको प्रकाश मिल जाता है, वापस चांदनी रातें आ जाती हैं। तो सोम मतलब चंद्रमा, नाथ जो सोमनाथ शंकर जी का नाम है वो चंद्रमा का नाथ, वहाँ चंद्रमा जब स्नान करते हैं समुद्र में तो उनका जो अंधारियाँ रातें हैं ना, अंधेरा चला जाता है, फिर प्रकाश आने शुरू होता है, फिर 15 दिन में जाके नहाता है वहाँ, तो इसलिए उस क्षेत्र का नाम ही प्रभास क्षेत्र हो गया कि यहाँ चंद्रमा को प्रकाश पुनः प्राप्त हुआ। परंतु भगवान के इस दिव्य सूर्य, हाँ क्या है, यदि भा अगर उस प्रकाश का वर्णन करना चाहें तो सूर्य सहस्र हजारों सूर्य उगे एक समय, युगपद उथिता का मतलब एक समय हजारों सूर्य उग जाएं, इतना भगवान के अंदर से प्रकाश निकलना था। तो भगवान वैसे ही ब्रह्म ज्योति कितनी चमक वाली है, और ये विश्व रूप से इतना प्रकाश निकल रहा था मानो एक समय में हजार सूर्य उदय हुए हैं। कहाँ दिख रहा था? दिवी, दिवी का मतलब आकाश में, आकाश में दिख रहा था। सादृशी स्याद, ये जो भगवान का प्रकाश था, इस अद्भुत रूप का जो प्रकाश था, एक समय हजार सूर्य उदय होके जितना प्रकाश करें वैसा ही था। भासस्तस्य महात्मन, उस महान भगवान के इस प्रकाश का वर्णन किया, इसलिए तो इस श्लोक में भगवान के प्रकाश ऐसे का वर्णन किया जिसकी किसी तुलना दी नहीं जा सकती, उसके साथ तुलना हो नहीं सकती है। हजार सूर्य एक समय उगे हैं ये संभव नहीं है, तो एक ऐसी तुलना है जो अनुपम है। अनुपम शब्द का क्या अर्थ है? जिसकी उपमा न दी जा सके, उसके समान और कोई नहीं हो, उसको अनुपम कहते हैं। भगवान अनुपम है। हाँ, परंतु यहां जो वर्णन किया है इसको कहते हैं उत्प्रेक्षा। क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है किसी का रूपक बिठाना। असली चीज नहीं है लेकिन ऐसी किसी चीज का वर्णन करना जिससे उसका अंदाजा लग जाए, उसका पता लग जाए, उसको कहते हैं उत्प्रेक्षाएं। उत्प्रेक्षाएं सामान्य लोगों को समझाने के लिए, अब श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अर्जुन ने क्या देखा। अवर्णीय, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। अर्जुन ने जो देखा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवर्णनीय के लिए क्या शब्द लिखा है? अकथ्य अवर्णीय, एक ही बात है जिसका वर्णन ना हो सके। परंतु संजय उसका एक रूपक, एक उसका रूपक बिठा रहे हैं। जिस रूपक के लिए हमने कौन सा शब्द बताया अभी आपको? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा को रूपक भी कहते हैं। तो रूपक बिठा रहे हैं धृतराष्ट्र को समझाने के लिए। ये तो भैंस के आगे बैन बजाना है, वो पहले देख एक धृतराष्ट्र को आंखें नहीं, फिर उसको कहे हजार सूर्य, उसको एक का ही पता नहीं बेचारे को। उसको समझा रहे हैं कि हे महाराज प्रज्ञा चक्षु, आप हजार सूर्य के समान। वो कहते एक का कितना होता है क्या पता मुझे। तो ये ऐसा रूपक उसके लिए बिठा रहा है, इसलिए तुलना किससे दे रहे हैं? एक समय में हजार सूर्य उदय हो, जितना प्रकाश हो उतना प्रकाश उस भगवान के अद्भुत दिव्य विश्व रूप से निकल रहा था। 13वां श्लोक, तत्र एक स्तंभ जगत कृष्णम प्रभक्तम अनेकधा अपश्य देव देवस शरीरे पांडवस्तदा। उसी युद्ध भूमि में, तत्र तत्र का मतलब कुरुक्षेत्र के रणभूमि के मध्य, कहां? देव देवस्य शरीरे, भगवान श्री कृष्ण के शरीर में। देव देवस्य शरीर, जो देवताओं के द्वारा भी पूजनीय भगवान है उसके शरीर में। पांडवा तदा अपश्यत, अर्जुन ने देखा। क्या देखा? जगत कृष्णम, पूरे जगत के सारे भाग देखे एक जगह पे, एक स्तंभ। बोले एक जैसा दिखा नहीं, ऐसे जैसे जगत घूम रहा है, जैसे गोला धरती का घूम है ना, तो ऐसे घूम रहा है। अनेक दृष्टियों से देखा, अनेक धा प्रभक्तम, जगत एक देखा अनेक दृष्टि से, वो चल ही रहा था वो तो। अनेक प्रभक्तम, वो तो चल ही रहा था ऐसे जैसे घूमे और उसको देख रहा था बार बार, वही जगत तो एक है लेकिन नाना प्रकार से उसके सामने आ रहा था। चक्रवर्ती पाद का तत् का अर्थ है उस युद्ध भूमि में, और देवदेव इसका मतलब भगवान के शरीर में, पूरे शरीर को एक समय कोई गणना करके समझाए ये संभव नहीं है। इसलिए अर्जुन ने एक समय में एक ही जगह देख, एक शरीर विश्व का एक अंग विभाग विभाग देखा, फिर दूसरा विभाग देखा, क्योंकि प्रभक्तम एक स्तंभ, इसका अर्थ यह है कि कुछ चीजें मानो के भगवान के चरणों में थी, कुछ जांघों में थी, को ऐसे तो अर्जुन जैसे देखता गया वहां अलग 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 चीजें पूरे संसार की दिखाई देने लगी। और ये भी देखा कुछ चीजें पृथ्वी की बनी हुई थी, कुछ सोने की बनी हुई थी, कुछ हीरे माणिक मोतियों की बनी हुई थी, और कितना बड़ा था बोला 50 करोड़ योजन, नहीं 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 बोलते नहीं नहीं 100 करोड़ योजन, नहीं 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 1000 करोड़ योजन, कोई अंत नहीं था, इतना भगवान का विस्तार फैला हुआ था। क्या हुआ उसके बाद, बलदेव विद्याभूषण कहते हैं उसी युद्ध भूमि में कृष्ण के शरीर में, और कृष्ण के शरीर में हजारों सरों वाले दिव्य रूप को अर्जुन ने देखा, और उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था, और प्रभुभक्त का मतलब अनेक जगहों पे अलग अलग चीजें उन्होंने देखी, जैसे सातवें श्लोक में कहा है। सातवें श्लोक में क्या है देखो, एक स्तंभ जगत कृष्णम, जो पहले देखा है वो और जो नहीं देखा है वो भी देख लो, ऐसे ही है ना। हाँ तो ये उसका वर्णन है। और ये जगत किसका बना हुआ था, बोला कहीं पृथ्वी थी, कहीं स्वर्ण था, कहीं बहुपा ना, ये बलदेव विद्याभूषण भी यही लिखते हैं, कहीं छोटा था, कहीं बहुत मध्यम का था, बहुत बड़ा था, कहीं प्रभुपाद जी लिखते हैं तत्र का अर्थ है, तत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ क्या है कि अर्जुन और कृष्ण दोनों एक ही रथ के ऊपर बैठे थे, और वह वहां बैठा बैठा अर्जुन कृष्ण के ही अंदर सारा विश्व देख रहा था। इसका अर्थ है कि कृष्ण तो उस प्रकाश में गुम हो गया, अब सिर्फ वो ही देख रहा था। अगर कृष्ण को देखता होता तो भयभीत नहीं होता, तो कृष्ण तो हो गए अदृश्य और विश्व रूप हो गया प्रकट। कृष्ण अगर वहां होते तो अर्जुन को भय नहीं लगता। तो वहां रथ के ऊपर बैठे बैठे कृष्ण के शरीर में ये सब देख रहे हैं। तो वो कहते दूसरे युद्ध भूमि में कोई भी नहीं देख सकता, क्योंकि अर्जुन को ही भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी, बाकी नहीं देख सकते थे। और दिव्य दृष्टि नहीं दी थी किसी को भी, किसी ने नहीं देखा, ऊपर वाले ऋषि देख रहे थे, वो आएगा देवलोक ऋषि लोग देखें, क्योंकि ये दिव्य रूप है ही देवताओं का रूप। अब लिखा है देखो प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के ही शरीर में हजारों लोक देख रहे थे। और हम वैदिक साहित्य से सुनते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, कुछ पृथ्वी के बने हैं, कुछ सोने के हैं, कुछ हीरे मोतियों के बने हैं, कुछ महान बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ मध्यम जो है आकार के हैं। वो रथ के ऊपर बैठा हुआ अर्जुन ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन लोग समझ नहीं रहे थे कि अर्जुन और कृष्ण में क्या बात हो रही है। 14 श्लोक, ततस्य विस्मयाविष्ट हर्ष रोमा धनंजय प्रमय सृषा देवम कृतांजलेर अभाषत। तत् उसके उपरांत अर्जुन को पहला कौन सा रस अर्जुन में प्रकट हुआ, विस्मय। क्या लिखा है देखो, विस्मय आश्चर्य, इसको कहते हैं विस्मय रस। रस कितने हैं भक्ति रसामृत सिंधु में पड़े हैं? उसमें से पांच है स्थाई और सात है गौण। उन सात में एक ये है, विवर्त नहीं अभी, आश्चर्य है आश्चर्य। विस्मयाविष्टो, विस्मया अर्जुन के ऊपर आश्चर्य का आविष्ट हुआ। बोला कैसे पता लगा उसको आश्चर्य लगा? बोला हर्ष रोमा, वो रोमांच हो गया अर्जुन को, रोमांच हो गया। सह धनंजय, धनंजय को, और धनंजय प्रणाम करने लगे, प्रणम्य शीर्षा देवम, भगवान को प्रणाम करने लगे सर से, दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, कृता अंजलि, अंजलि हाथ जोड़ने को कहते, कृता अंजलि अभाषत, प्रार्थना करने लगे। तो यहां तक जो अर्जुन ने देखा उसका वर्णन संजय कर रहा है। तो कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है, संजय ने जो विश्व रूप का वर्णन करो किया, तो ये है 6 से 14 तक। अब अर्जुन बोल, हाँ अब इसके ऊपर अर्जुन जो कृष्ण को जानते थे उनको अब अद्भुत रस का अनुभूति हुई। अद्भुत रस, इसका नाम क्या है? क्या बोला, क्या बोला, क्या क्या प्रश्न क्या है? एक अर्जुन ने देखा और किसी ने नहीं देखा, बाकी देवताओं ने देखा, ऋषियों ने देखा, लेकिन उस युद्ध भूमि में खड़े हुए किसी ने नहीं देखा। संजय ने देखा जिसने धृतराष्ट्र को सुनाया, और व्यास देव ने देखा जिसने लिखा, लेकिन युद्ध में खड़े हुए किसी ने नहीं देखा। और हम देख रहे हैं, प्रभुपाद ने लिखा है, आपको बता रहे हैं।
महाभारत में विश्व पर्व में पितामह भीष्म ने अर्जुन कृष्ण को स्वयं प्रणाम करके कहते हैं, आपका विराट रूप दर्शन करके सब भयभीत हो गए। वो कैसे पता था पितामह भीष्म को?
वो जो 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 पांडवों की सभा में भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बनने गए, बन के गए थे, तो विश्वरूप जो दिखाया था वो उन सब ने देखा था। उसको द्रोण ने देखा, भीष्म ने देखा, और उसको भी सबने नहीं देखा, उधर कृपा आचार्य इन 3-4 ने वो देखा था, ये नहीं। ये देखते इसमें काल रूप देखते कि सारे का चूर्ण बन रहे हैं, तो हथियार छोड़ के पहले ही घर चले गए होते। ये उनको दिखाया नहीं, ये नहीं दिखाया। नहीं, भीष्म पितामह तो मालूम था क्या होने वाला है, वो महाजन है, भगवान जितना उनको जनवाते हैं उतना जान लेता है, परंतु ये देखा नहीं। अब को पहला कौन सा अर्जुन विश्वरूप देखने से, श्री कृष्ण के विश्वरूप देखने से अर्जुन में कौन से रस उत्पन्न हुए? तो पहला कौन सा? अद्भुत रस, आश्चर्य या अद्भुत रस। वो प्रणाम हाथ जोड़ के सर से, पहले ये पहला रस याद कीजिएगा। अर्जुन को यहां धनंजय कहा गया है, इसका मतलब आश्चर्य तो उसने देखा, धन बहुत देखा, इसका मतलब दुनिया में वैभव देखा था, परंतु कृष्ण को देख के अति और अति आश्चर्यचकित हो गया और भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा और धरती के ऊपर सर झुका दिया और हाथ जोड़ के क्या कह रहा है? अब देखो एक लाइन लिखी है बलदेव ने, उन्होंने अपने आंख बंद नहीं करे डर के मारे, अभी तो उसको आश्चर्य लगा है, डर आगे लगेगा जब काल देखेगा तब दूसरा भाव आएगा। अब एक रस कैसे उत्पन्न होते हैं, रस कैसे उत्पन्न होता है, उसके लिए एक होता है आलंबन, एक आलंबन। जिसके कारण एक आलंबन होता है, दूसरा शब्द होता है उसके लिए आलंबन उद्दीपन, उद्दीपन। आलंबन का अर्थ है विषय, किस विषय के कारण रस उत्पन्न हुआ, तो कृष्ण को देख के रस उत्पन्न हुआ, तो विषय तो कृष्ण है। हाँ नहीं, उद्दीपन क्या कहते, उद्दीपन का अर्थ ये है कि हाँ नहीं, जैसे मानो के बच्चे का चप्पल देखें तो बच्चा याद आए, इसको उद्दीपन कहते हैं। जैसे भाई चांदनी चांद निकला, चांदनी रात है, तो भगवान को रास का मन में उद्दीपन हुआ। उद्दीपन का मतलब कोई ऐसी चीज देखने से भाव और रस उत्पन्न हो, उसको उद्दीपन कहते हैं। आलंबन जिस जो उसका विषय हो रथ का, रस का, तो आलंबन जो है उसको विषय कहते हैं जिससे रस उत्पन्न होता है। रस में पांच अंग होते हैं, रस जो कोई रस होता है ना उसमें पांच अंग होते हैं, सात्विक भाव। सात्विक भाव क्या होता है, जैसे रोमांच हुआ ये सात्विक भाग है, हंसना नाचना ये सात्विक भाग है। दूसरा होता है अनुभव, ये जो ये अनुभव संचारी भाव, विभाव और स्थायी भाव। संचारी ये क्या है, जो आपने जहां छोड़ा है भक्ति रसामृत सिंधु, इसके दूसरे अध्याय में ये सब चीजें हैं, उन 20वें अध्याय से ये शुरू होगा। तो पांच चीजें रस के लिए, पांच चीजें चाहिए रस के लिए, सात्विक भाव चाहिए, अनुभाव चाहिए, संचारी भाव चाहिए, विभाव चाहिए, स्थायी भाव चाहिए। अनुभाव कोई चीज पहले, जैसे ये जो है ये विभाव है, स्थायी भाव विभाव। इसको विभव का अर्थ है जो पहले जागे, उसमें एक है आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। जो विभव है उसके दो अंग हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन का मतलब किसको देख के हुआ और उद्दीपन का मतलब क्या देख के हुआ। जैसे यशोदा मैया को देखकर भाई किनका कृष्ण को दूध पीने की इच्छा हो, तो ये माता को देखा वो उसके लिए क्या हुआ, उद्दीपन। और माता जो स्वयं है उसका आलंबन है, उसका जाके दूध पिएगा। तो ये क्या रस की परिभाषाएं हैं। तो यहां क्योंकि रस उत्पन्न हुआ है तो इसमें अर्जुन बार बार कृष्ण को देख रहा है आश्चर्य से, ये है उद्दीपन। इससे रस जागृत हुआ, रस कैसे जागृत हुआ, उद्दीपन से। उद्दीपन क्या है, आश्चर्य। जो भगवान में ऐसे अद्भुत अपने मित्र के अंदर इतना बड़ा नाना प्रकार का जो वैभव देखा, विभूतियां देखी, तो वो उद्दीपन का काम किया। और अब हाथ जोड़ के जो प्रणाम कर रहा है इसको अनुभव कहते हैं। अनुभव का मतलब अब क्या, उद्दीपन हुआ, आश्चर्य रस हुआ, तो फिर अनुभव हुआ प्रणाम करना। और जो उसके रोमांच हुआ ये सात्विक भाव है, जो रोमांच हुआ ये सात्विक भाव है। और मन में, उसके मन में जो विचार आए, बड़ा आनंद हुआ, अरे मेरे मित्र में इतना बड़ा मेरे मित्र का महिमा है, ऐसा मेरा मित्र है, ऐसा मेरा फ्रेंड है, ये आनंद का उदय हुआ। और दृढ़ संकल्प हुआ, रही इसे ऐसा मित्र मेरे को मिला है, ये है संचारी भाव, ये मन में उत्पन्न हुआ है। ये चारों जब मिलते हैं तो स्थायी भाव होता है, वो है इसमें विस्मय। कौन सा, अद्भुत या विस्मय। तो यहां विस्मय के भाव में उत्पन्न हुआ। और ये पांचों मिलकर अद्भुत रस बना। तो ये अद्भुत रस कैसे बना, इसका आपको आज थोड़ा सा जानकारी दी। क्या अद्भुत रस कैसे बना? आलिंबन, उद्दीपन, आलिंबन, आश्चर्य देखा, रोमांच हुआ, ये सात्विक भाव हुआ, फिर मन में आनंद हुआ। तो ये सब जो भाव इकट्ठे हुए पांच, तो कौन सा स्थायी भाव हो गया? अद्भुत, अद्भुत रस का रस उत्पन्न। तो रस के, अब एक बात आज याद करें अपनी जानकारी के लिए, रस कैसे उत्पन्न होता है? पांच प्रकार के, उसमें विभाव जो पहला है उसमें पहले उद्दीपन होना चाहिए, आलंबन होना चाहिए, विभव होगा, विभव से अनुभव होगा, विभव विभव हो गया तो अनुभव हुआ। तो दूसरा भाव जो दूसरा आया ना, विभव से क्या देखा उसने? अनुभव हुआ, हाथ जोड़ लिए, उसको देख के, अनु का मतलब उसको देखकर, उसके अंदर जो भाव था प्रणाम किया आश्चर्य देखकर, फिर रोमांच हुआ, फिर मन में विचार आया। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि भगवान की दिव्य दृष्टि के द्वारा दिव्य दर्शन को करके अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो पहले भाव था वो तत्काल ही बदल गया। तो पहले कौन सा भाव था जो बदल गया? सखा भाव था, वो बदल गया। पहले दोनों प्रभुपाद गए, उनका पहले स्थाई भाव है सखा, परंतु यहां अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया हाथ जोड़कर, भगवान के विश्वरूप की महिमा गा रहा है अर्जुन, प्रार्थना कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अर्जुन के अंदर अद्भुत आश्चर्य के रस का उदय हुआ। अब महान भक्त कृष्ण को क्या देखता है? सारे रसों का, सारे रसों और संबंधों का समूह है। इसके लिए कौन सा शब्द आपने पढ़ा था भक्ति रसामृत सिंधु में? अखिल रस मूर्ति, अखिल रसामृत मूर्ति। अब 12 रस हैं शास्त्रों में, प्रभुपाद जी लिखते हैं वो सारे के सारे श्री कृष्ण में सदा ही 12 ही रस श्री कृष्ण में परिपूर्ण है। ये कहा जाता है कि भगवान संबंधों का सागर है, अब किस किस के बीच में संबंध होते हैं? प्रभुपाद 3 संबंध लिखे थे, वो जीव जीव के बीच में, और देवताओं के बीच में, और भगवान और भक्त के बीच में। ये सारे संबंध जो होते हैं इसमें रस उत्पन्न होता है। यहां अर्जुन कृष्ण के संबंध कौन से प्रभावित हुए हैं? आश्चर्य, अद्भुत। अर्जुन बहुत गंभीर है परंतु रोमांच हो गया और प्रणाम करने लगा हाथ जोड़कर, भयभीत नहीं हुआ परंतु कृष्ण के अद्भुत रस से अभिभूत हुआ। तो तत्काल में क्या हुआ है? अद्भुत रस, जो भगवान, जो कृष्ण अर्जुन का सखा रस है उसमें ये अद्भुत रस का उदय हुआ है। तो इसका अर्थ है जो पहले 5 रस है वो तो पहले होते हैं, उसमें ये 7 और रंग डाल के प्रकट होते हैं। ये आपके परीक्षा के में नहीं, रस नहीं आएगा, परंतु इस रस की परिभाषा आपको समझ गए, रस उत्पन्न कैसे होता है। अब हम 15वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यहां से अर्जुन विश्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, वो था संजय का, पहले था श्री कृष्ण का, 5 से 8 कृष्ण है, और 9 से 14 संजय है, और अब श्री कृष्ण अब संजय बोल रहा है, अब अर्जुन बोल रहा है। अर्जुन वाचा पश्यामि देवांस्तव देव दे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघा ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम्। ऋषिं च सर्वान् उर्गांश्च देव्या। अर्जुन कहने लगे आपके शरीर में देव देव देहे, आपके शरीर में देव देव देह, मैं देख रहा हूं देवता, सारे देवता मैं देख रहा हूं, पश्यामी देवांश सारे देवता देख रहा हूं, और क्या देख रहे हो, सर्वांश तथा भूत विशेष संघाम, सारे प्राणियों का समूह देख रहा हूं, सारे जीवों का समूह देख रहा हूं, और मैं ब्रह्मा जी को भी देख रहा हूं, ब्रह्मांडम, और किसको देख रहे हैं, विष्णु को देख रहा हूं, जो ब्रह्मा ब्रह्मा कहां बैठा है, ब्रह्मांडम, ब्रह्मा को देख रहा हूं, विष्णु हुए जो ब्रह्मा के साथ कमल के ऊपर बैठे हैं, ईशम कमलासन स्तम, ईशम जो है ये विष्णु के लिए है। अच्छा यहां विष्णु लिखा है इन्होंने, और ऋषि से सर्व और सारे ऋषि, और कौन है, शाइनिंग स्नेक्स उर्गांश च दिव्यान, दिव्य उर्गान का मतलब सांप, दिव्यान का मतलब दिव्य जो चमक रहे हैं, तो ईश का अर्थ कमल के, कमलासन, कमलासन कमल के ऊपर तो है ब्रह्मा जी, ईशम। अर्जुन ने क्या कहा, यह 7 श्लोकों में वर्णन आएगा, अर्जुन का यह वर्ण 7 श्लोकों में चलेगा। मैं सारे जूनियों में उत्पन्न होने वाले जीवों को देख रहा हूं, भूत विशेष ब्रह्मा जी को देख रहा हूं, चतुर्मुखी को, विष्णु अंतर्यामी को देख रहा हूं, ब्रह्मा जी कमल के ऊपर है, जो गर्भोदक्षाई विष्णु है उसको देख रहा हूं, ईश ईश को। अब इसका अर्थ क्या, ये क्यों लिख रहे हैं बलदेव विद्या, ब्रह्मा कहां देख रहे हो, बोला नीचे विष्णु, विष्णु की नाभि से निकला कमल और कमल का डंडा, उसके ऊपर कमल, उसके ऊपर ब्रह्मा को देख रहा हूं, तो ब्रह्मा देख रहा हूं, डंडा देख रहा हूं, और गर्भोदक्षाई विष्णु भी देख रहा हूं, और मैं वासुकी नाग ये जो है वासुकी को देख रहा हूं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं जगत की सब चीजों को अर्जुन देख रहा है, इसलिए वो ब्रह्मा जी को देख रहा है जो पहला ही सृष्टि में उत्पन्न जीव है, और दिव्य सर्पों को देख रहे हैं। अब देखो गर्भोदक्षाई विष्णु, यहां प्रभुपाद लिखा तो है गर्भोदक्षाई विष्णु ही उसको देख रहे हैं, पर ईश को शंकर भी कहते हैं, दोनों बातें। तो गर्भोदक्षाई कहां रहते हैं, गर्भ सागर में, वो तो पाताल से भी नीचे है, ऐसे क्यों, भगवान है सबसे नीचे क्यों, अरे उसी से तो पाताल लोक निकलता है जो सबसे नीचे है, उसके बाद सब लोक है ऊपर, तो नीचे भगवान, तो भगवान भगवान की नाभि, इसको आप नाभि, नाभि को नभ कहते हैं, आकाश इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि वहां से जो कमल का डंडा है ये पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड है। नीचे पाताल लोक है, वो उसका पहला मंजिल है, और 14 मंजिल की इमारत है पूरा ये दुनिया, पूरी दुनिया, तो कमल कितना होगा, इससे भी बहुत बड़ा होगा। एक बार हम कहाँ कुंभ मेले में ये विचार कर रहे थे, 2 बूंदें अमृत की गिरी तो कितनी जगह पे गिरी होगी, तो बोला जब देवताओं के हाथ के कलश से गिरी हो कम से कम 1 किलोमीटर में तो होगी, तो बूंद भी उनकी इतनी छोटी नहीं होगी, तो इसलिए जो वो पूरा क्षेत्र है त्रिवेणी संगम में, कहीं भी स्नान करो अमृत वहाँ है, ऐसे नहीं है कोई हमारी जैसा कतरा होगा, तो वो देवताओं का कतरा है। तो ऐसे ये जो ब्रह्मांड पूरे का पूरा है, ये सारा गर्भोदक्षय विष्णु के ऊपर ही टिका हुआ, उससे निकला है उसी में समा जाएगा, फिर सभी उसमें वापस चला जाएगा प्रलय के समय। प्रलय के समय सब कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा समेत सभी सारे के सारे गर्भोदक्षय विष्णु के उधर में चल जाते। और प्रभुपाद लिखते हैं, और उर्गांश दिव्यान, उर्ग कौन सा है? वासुकी। और भी दूसरों को ही वासुकी कहते हैं। तो आपने वासुकी एक एक मुख वाला है सर्प, ये भी भगवान की विभूति अलग भी आया है। इस वासुकी को आपने कहाँ पढ़ा है? कहाँ सेवा, कहाँ वासुकी ने की है, कहाँ सेवा में लगा है? समुद्र मंथन में वासुकी को क्यों लाए थे? कहा कि तुम्हारे को रस्सी बनाएंगे। तो नीचे गर्भाध्यक्षाय विष्णु दिख रहे हैं, और ऊपर कमल के ऊपर ब्रह्मा जी दिख रहे हैं, और बीच में सारे ब्रह्मांड दिख रहा है पूरा। इसका मतलब आज से अंत तक सब कुछ अर्जुन ने देखा एक जगह रथ के ऊपर बैठे हुए। ये सब श्री कृष्ण की कृपा से संभव था। तो अर्जुन ने सारी सृष्टि को देखा, गर्भोदक्षाय विष्णु नीचे वहां से लेके ब्रह्मा तत्सत्य लोक तक सब कुछ देखा एक जगह बैठे हुए। 16 अनेक बाहो द्रवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वत्वानंत रूपम नानंतम न मध्यम न पुनस्त्वादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपः। पश्यामि त्वाम सर्वत्र, मैं आपको सब सर्वत्र देख रहा हूं। अर्जुन कह रहा है क्या देख रहे हो? भगवान पूछते हैं अनंत रूपम, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत रूप को देख रहा हूं। मतलब क्या है उसमें? उसमें अनेक बाहु उद्र वक्त्र नेत्र, अनेक मतलब ज्यादा, बाहु का मतलब हाथ, और उद्र का मतलब पेट, वक्त्र का मतलब मुख, नेत्र का मतलब आंखें। हे विश्वेश्वर, हे विश्व के ईश्वर, ये आपका विश्व रूप मैं देख रहा हूं, विश्व रूप। न पश्यामि, क्या नहीं देख रहे हो? बोला न आदि न अंत न मध्य, कहां से शुरू होता है कहां खत्म होगा, कहां बीच है पता नहीं लगता है। ये तो सारे का सारा सर्वत्र देख रहा हूं, कहां देखू कहां है, चारों ओर से आप ही हो। हे विश्वेश्वर, विश्वेश्वर किसको संबोधन है? बलदेव विद्याभूषण के ये है महाविष्णु को संबोधन, जो सृष्टि का कर्ता है, पहला पुरुष अवतार है ना, उसको संबोधन है, ऐसे बलदेव विद्याभूषण कहते हैं। वही आदि, वही चारों पुरुषों में आदि वो है, तीनों में से वो पहला है। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? कृष्ण परम पुरुष भगवान है और अनंत है, इसलिए उसके द्वारा सब कुछ देखा जा सकता है। आगे क्या आ रहा है देखिए, क्रीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतोदीपतिमान्तम् पश्यामि त्वां दुनरीक्षं समन्ता दीपता नलारक द्योतम अपरमेयम्। पश्यामि त्वम, आपको देख रहा हूं। क्या देख रहे हो मुझे? क्रीडिनम गदिनम चक्रिणम च, आपके सर के ऊपर सुंदर क्रीट है। क्रीट किसको कहते हैं? मुकुट को। क्रीट अर्जुन का एक नाम है, क्रीटी पढ़ा है कहीं? क्रीटी नाम का, क्रीटी गदी है भगवत गीता में, क्रीटी नाम है। अर्जुन का नाम क्रीटी क्यों है? आप अर्जुन के मुख्य आठ नाम है, कितने हैं? अर्जुन के कुछ मुख्य नाम है, छह के आठ कहते हैं, आठ है कितने? अच्छा आठ नाम है, आठ नाम में एक क्रीटी है, एक सव्यसाच है। क्रीटी का अर्थ है अर्जुन का जो मुकुट था, वो मुकुट इंद्र ने आधे आसन के ऊपर आप अपने साथ बिठा के और दिया था। तो अर्जुन का मुकुट सामान्य सामान्य संसार का नहीं है, इसके उसके लिए नाम ही हो गया क्रीटी। और सव्यसाची का क्या अर्थ है? दोनों हाथों से बाण चला सकता है। सब लोग तो एक हाथ से, वो दोनों से, यहाँ से भी यहाँ दोनों से चला सकते हैं। एक शब्द और अर्जुन का नाम है फाल्गुनी। तो फाल्गुन नक्षत्र नक्षत्र में जन्म हुआ है कि फाल्गुनी उसका नाम है। गुड़ाकेश कुछ नाम है जो अर्जुन के रोज लेने से बड़ी बड़ा ये कि नए में लोग कुछ नाम लेते हैं। कुछ मुख्य आठ नाम अर्जुन के कौन से हैं? भगवत गीता में सबसे प्रसिद्ध नाम अर्जुन का कौन सा, सबसे ज्यादा बार जो लिया गया है? पार्थ। और दूसरे नंबर पे कौन थे? तीसरा भारत। तीसरा है, गिनती करके देख लेना। हाँ मुख्य पार्थ है, इसलिए इसलिए भगवान का नाम ही पार्थ सारथी हो गया। तो मैंने आप मैं आपको देख रहा हूं, मुकुट पहना हुआ है, गदा हाथ में लिया है, चक्र लिया हुआ है। तेजो राशिम सर्वतो दीपंतम, और आपके स्वरूप से चारों ओर से प्रकाश निकल रहा है। कितना प्रकाश है माने? भगवान कहे बोला दुर्निरीक्षम, देख नहीं सकता हूं, देखने में बहुत मुश्किल है, इतना आंखें बंद हो जाती है, इतना चमक चमक रहा है। और अपरमेयम द्युतम, द्युतम का मतलब जो इसका चमक है ना, उसकी नाप नहीं की जाती। अपरमेयम का मतलब जिसका कोई नापदंड नहीं की जा सकती, कितना किलोमीटर ऐसे का नहीं कह सकते हैं। कहां है? समन्ता सर्वत्र है। कैसा है? दीपत, दीपत अनल अर्क। अब देखो तीन शब्द है, दीपत अनल कहते हैं आग को, और अर्क करते हैं सूर्य को। सूर्य और आग के समान ये प्रज्वलत है, ज्वाला प्रज्वलत है, ताप प्रज्वलत है। अब अर्जुन दूसरे दृष्टि से उसी रूप का वर्णन कर रहा है, पहले चक्र आदि का किया ना, अब कहते हैं आपको देखना ही मुश्किल है। मैं इसलिए देख पा रहा हूं कि आपने मुझे दिव्य दृष्टि दी है, क्योंकि ये चारों ओर आग की तरह, ज्वाला की तरह, जैसे आग की लपटे हैं, ऐसे लपटे भड़क रही हैं। क्या करूं इसको, इसका नाप करना कहां तक है पता नहीं लगता है। प्रभुपाद ने तात्पर्य नहीं लिखा है। त्वम अक्षरम परमम वेदित्वम, त्वम अस्य विश्वास्य परम निधानम, त्वम व्यशाश्वधरं गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। मतो मे, मेरा मत ये है, अर्जुन अपना मत दे रहा है, आप क्या हैं? आपको त्वम अक्षरम परमं वेदित्वम, आपको परम ब्रह्म करके जाना जाता है। और त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, इस विश्व के आप परम आश्रय हो। त्वम अव्ययः, आप अविनाशी हो, आप शास्ता हो, शास्ता को मतलब रक्षक हो, और धर्म गोप्ता, और धर्म के आप अविनाशी सनातन धर्म के रक्षक हो। गोप्ता का मतलब रक्षक, आप अविनाशी हो और सनातन धर्म के रक्षक हो। धर्म शाश्वत धर्म मतलब सनातन धर्म, शाश्वत मतलब सदा रहने वाला, उसके रक्षक हो। और सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे, मैं जानता हूं कि आप सनातन पुरुष हो, ये मेरा मत है। आपके इस विश्व रूप के तेज को देखकर मैं अब पूर्ण रूप से प्रभावित हो गया हूं, ये इस श्लोक का भाव है। आप जाने जाते हो वेदित्वम, जैसे वेदों में वर्णन है, अत्परायया तद अक्षरम अधिगम्य यत्तद अधीश अदृश्यम। उत्तम ज्ञान वो है जिसके द्वारा अविनाशी ब्रह्म का अनुभूति की जाए, जिसको देखा नहीं जा सकता, ये मुंडक उपनिषद है। तो वेदों ने जो कहा है कि आप परम ब्रह्म हो, आप मैं, इसका मेरे को विश्वास हो गया, आप परम अक्षर हो, आप निधान हो, आप अविनाशी हो, आप धर्म के गोप्ता हो, धर्म के रक्षक हो, आप ही सनातन पुरुष हो, जैसे वेदों में लिखा है, सकारणम कारणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जानिता न चाधिपः। वो सब का स्वामी है, सब इंद्रियों का, वो सबकी सृष्टि करता है, उनकी कोई नहीं करता है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं है। 19वां श्लोक, अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम अनंत बाहुं शशि शौर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीपितहुतास वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम् इदं तपन्तम्। मैं देख रहा हूं कि न आपका आद है, न अध है, अंत है, न मध्य है, और अनंत वीर्य है आपका, अनंत शक्ति संपन्न है आप, अनंत बाहु आपके हजारों भुजाएं हैं, और सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं, और आपके मुख से ज्वाला निकल रही है, दीपित हुतास वक्त्रम, आपके मुख से ज्वाला निकल रही है, कर क्या रही है, स्वतेजसा विषम इदम तपंतन, ये पूरे विश्व को तपा रही है, जला रही है। आप अनंत शक्ति वाले हैं, कौन सी शक्ति, बोला छह शक्तियां जो भगवान की है, वीर्य यश श्री ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, और भी छह शक्तियों का नाम है, ज्ञान शक्ति वैराग्य ऐश्वर्य वीर्य तप तेज। आपके अनंत भुजाएं हैं, आपके आंखें चांद और सूर्य के समान, आपकी आंखें सूर्य चांद की समान शीतल है, आनंद देती हैं, किसको, देवताओं को जो आपके आज्ञाकारी हैं, और आपकी आंखें सूर्य के समान असुरों को तपाती हैं और जलाती हैं, ये दोनों का अर्थ किया है बलदेव जी ने, विद्याभूषण ने, और आपका मुख ज्वाला उगल रहा है, कैसी ज्वाला, बोला जैसी प्रलय के समय निकलती, वो ज्वाला निकल रही है जो प्रलय के समय निकलती है। ये बार बार अर्जुन इतना आश्चर्य में है कि कुछ शब्द बार बार कह रहा है। तो ये उक्ति जो है पुनरुक्ति कोई ये आश्चर्य का सूचक है। ये कहा जाता है प्रसादे विस्मय हर्षे द्वि त्रि उक्तम न दूष्यति। जब किसी के ऊपर कृपा हो और आनंद में मगन हो तो एक ही बात को दो चार बार कहे कोई बात नहीं। जैसे रसगुल्ला देख के बार बार कहे दे दो दे दो दे दो, तीन बार कहे अरे वाह क्यों खाने में अच्छा लग रहा है नहीं भाई दे दो दे दो दे दो, तो ये बुरा नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान के छह जो वो छठ गुण लिखा है, ये कौन से शब्द की परिभाषा है? अनंत वीर्यम। अनंत वीर्यम की परिभाषा क्या है? भगवान षट गुण संपन्न है। और फिर इस श्लोक में बहुत सी चीजें हैं जो पहले भी कही गई हैं, तो ये आवर्ती हो रही है। तो आवर्ती ये अद्भुत रस का अभिव्यक्ति है, ये आवर्ती अद्भुत रस की अभिव्यक्ति है, इसलिए इसको दोष नहीं माना जाता। अब 20वां श्लोक पढ़ते हैं। दिव्याव पृथ्व्योरिदमनंत ही व्याप्तम तव्येकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपं उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रवृत्तं महात्मन। दिव्या आ पृथ्वी और, इसका मतलब जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो भी है। दिव्या आ पृथ्वी इदम अनंतरम, दोनों के बीच में जो है। दिशस्य सर्वा और सब दिशाओं में, दस दिशाओं में क्या है? आप ही केवल समाये हुए हैं। व्याप्तम त्वया एकेन, आप एक ही समाये हुए हैं और कोई नहीं है। और ये कैसा रूप है? दृष्टम अद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम। दो रूप, एक तो अद्भुत भी है और उग्र भी है। अद्भुत और उग्र दोनों रूप है। अब अद्भुत तो रस हो गया, अब उग्र के वजह से भयभीत होगा अर्जुन। और तीनों लोक भयभीत हो रहे हैं। लोक त्रियम प्रवृत्तम, हे महात्मन, हे महान भगवान। तो मेरे ख्याल में 9 श्लोक वो पूरे हो गए जो अर्जुन वर्णन कर रहा था। और अब यहां आप थोड़ा लिख लो, क्योंकि ये आपके प्रश्न है परीक्षा का। अब 10 श्लोकों में भगवान काल रूप का वर्णन कर रहे हैं, तो ये उनमें से एक श्लोक है। यहां से शुरू हो रहा है। इन 10 श्लोकों में भगवान अपने काल रूप का वर्णन कर रहे हैं। इन 10 वर्सेस लॉर्ड शोज हिज फॉर्म एज ए टाइम। 10 श्लोकों में भगवान काल रूप का वर्णन कर रहे हैं। और बोला क्यों दिखा रहे हैं भगवान? क्योंकि अब अर्जुन इस रूप को देखने के लिए योग्य हो गया। अभी तक विश्व रूप देखा, अब योग्य हो गया। ये कौन सा रूप दिखाया? हमने कल बताया था आपको, पहले भगवान कौन सा रूप दिखाएंगे? एक शब्द बोला था खास दिव्य, एक शब्द बोला था जो वेदों में है, उस रूप की स्तुति होती है। पुरुष सुक्तम में जो भगवान का रूप है उसको दिखाऊंगा। जब अर्जुन योग्य हो जाएगा तब काल रूप दिखाऊंगा। तो ये आइए पुरुष सुक्तम में जो भगवान के रूप का वर्णन है वो दिखाया, अब काल रूप दिखा रहे हैं। जब योग्यता आ गई तो यहां से काल रूप शुरू होगा। और पुरुष सुक्त किसको कहते हैं? हमने कल बताया था आपको, क्या मंत्रों के समूह को सुक्त कहते हैं, सुक्का सुक्ता मंत्रों का समूह, और सुक्तों का समूह हो उसको क्या कहते हैं, समिता, समिता, और समिता एक वेदों का अंग है, और तीन और वेदों के अंग है। ये आपने उस ईशोपनिषद ने पढ़ाया था किसी ने, पहले दिन, पहले दिन कुछ पढ़ाना चाहिए, आरण्य ब्राह्मण और उपनिषद और संहिता। और ये ईशोपनिषद कौन से वेद का अंग है, ईशोपनिषद कौन से वेद का है, यजुर्वेद का है, शुक्ल यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद के अंतिम 40वें अध्याय में, 40वां अध्याय शुक्ल यजुर्वेद। तो यहां से 10 श्लोकों में, अब जो 10 श्लोक आएंगे उसमें काल रूप का वर्णन है, क्योंकि इसमें आया ना कि सभी दिशाओं को आपके मुख से निकलने वाली अग्नि तीनों लोगों को तपा रही है, ये काल रूप है। तो इससे पहले कहां से, तो कहां से बोला, 14 से लेके बोला था, कहां से बोला था, 9 से 14, अब हम कहां हैं, 20 में हैं संजय, और 14 से 15 से 20 तक अर्जुन ने भगवान को विश्व रूप का वर्णन करिए प्रार्थना किया, अद्भुत रूप का दर्शन किया। अब काल रूप शुरू हो रहा है 20वें श्लोक से। सो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में सभी दिशाओं में केवल आप ही समाये हुए हैं, और आपका ये भयानक रूप, अद्भुत रूप, अनंत रूप तीनों लोकों को तपा रहा है और भयभीत कर रहा है। हे महात्मन, तीनों लोकों को आप ढक रहे हैं सब प्रकार से, आप आधार हैं परंतु सबको ढक रहे हैं। अब कहते हैं ऐसा समझना चाहिए कि इस युद्ध को देखने के लिए देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर, ये जो ऊपर के लोग हैं उसमें से कोई तो है सहयोगी, ये तो कोई तो पांडवों को चाहते हैं, और कोई तो मध्यस्थ हैं, और कोई जो है और हैं, वो सब आ गए हैं इस रूप को देखने के लिए। केवल अर्जुन को दिव्य दृष्टि नहीं दी गई थी, नॉट ओनली अर्जुन वाज गिवन सल्चलाइ, दे ऑल्सो हैव, और किसके पास थी, देवताओं के पास, किन्नरों के पास, इन सब के पास दिव्य दृष्टि थी। अगर केवल अर्जुन ने, एकमात्र अर्जुन ने यदि ये रूप देखा होता तो कोई कह सकता है कि अर्जुन सो गया था और स्वप्न में देखा है, कहीं से गाड़ी चलाता हुआ आदमी सो जाता है, ये तो चलाने वाला दूसरा पीछे बैठा तो सोता ही है, तो कहीं अर्जुन सो गया हो और उसने स्वप्न देखा हो, तो इसलिए भगवान ने कहा और सब लोग भी देख लें, उनको भी दिव्य दृष्टि दी ताकि आप सब लोग देख लो कि लोग इसको ऐसे न कहें कि काल्पनिक रूप है। भगवान चाहते थे कि बहुत सारे अर्जुन के इस विश्व रूप के दर्शन के साक्षी हों। तो ये कहां लिखेंगे आप, ये आप देख लीजिए, प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, दिव्या आप पृथ्वी हो, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में और तीनों लोकों में, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसका मतलब केवल अर्जुन ने नहीं भगवान का विश्व रूप देखा परंतु ऊपर के लोकों वालों ने भी देखा, देवलोक वालों ने भी देखा। इसका अर्थ है कि अर्जुन ने जो देखा ये कोई स्वप्न नहीं था। जिन्होंने भगवान ने, जिनके ऊपर भगवान ने कृपा की, दिव्य दृष्टि दी, उन्होंने इस युद्ध भूमि में भगवान के विश्व रूप को देखा। अब 21वां श्लोक पढ़ते हैं और फिर कल के लिए रखते हैं, फिर हमारे पास 10 श्लोक, ये अध्याय भी पूरे हो। हम सोचते हैं कैसे भी नेक्स्ट वीक में हम 12वें अध्याय को पूरा कर लें, तो फिर आप तैयारी करो एग्जाम की आराम से बैठकर जन्माष्टमी तक। फिर जन्माष्टमी कब है? 30 अगस्त को है, तो उससे पहले भी ख़त्म हो सकता है पेपर वेपर में। जन्माष्टमी के बाद फिर नया नई राजा नया प्रजा जो भी होगा देखेंगे। नई राजा प्रजा का मतलब जो पढ़ाने वाला दूसरा आएगा जो भी होगा जब भगवान जो योग हो, लेकिन तब तक ये पूरा कर लें, आपको टाइम दें, तैयारी करें आप। काल रूप का 21वां श्लोक पढ़ते हैं। अमेहि त्वाम सुर संघ विशन्ति केचिद् भीता प्राञ्जल्य गृह्णन्ति। स्वस्तीति उक्ता महर्षि सिद्ध संगः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमीहि त्वां सुर संघा विशन्ति, बड़े बड़े देवताओं के समूह आपका शरण ले रहे हैं, और कुछ भय के मारे हाथ जोड़ के आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। केचित भीता प्राञ्जलियो गृणंती, हाथ जोड़ के आपकी गुड़गड़ा रहे हैं, आपको प्रार्थना कर रहे हैं भय के कारण। और स्वस्ति इति उक्ता, और ऋषि जो हैं वो कह रहे स्वस्ति हो स्वस्ति हो शांति हो शांति हो, कह रहे चारों ओर हाहाकार हो रहा है। महर्षि सिद्ध संगा, जो महर्षि और सिद्ध है वो स्वस्ति वाचन कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। स्तुवंती त्वाम, आपकी प्रार्थना कर रहे हैं किससे? स्तुति भी पुष्कला भी, बहुत सुंदर श्लोकों से। आपका शरण ले रहे हैं देवता, और उन देवताओं में कुछ भयभीत हैं बेचारे, दूर खड़े होके हाथ जोड़ के कह रहे हमारी रक्षा करो भगवान, हे नाथ हमारी रक्षा करो, ऐसे भी कुछ हैं। और बड़े बड़े सिद्ध और ऋषि जो हैं वो भय को देखकर सबको शांति के लिए शांति पाठ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्वस्ति अस्तो विश्वस्य, ऐसे कह रहे हैं। देवता जो ऊपर के लोकों में हैं, उन्होंने भगवान के इस भयानक रूप को देखा और उनसे जो चमक निकल रही थी, इसलिए वो सब रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। प्रभुपाद जी इतना ही लिखते हैं। अब क्या और दिख रहा है? ये पहले जो था वो दोबारा आ गया। रुद्रादित्य वश्वचये साध्या विश्वे अश्विनो मरुतस्य शंपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्च सर्वचैव सर्वे। रुद्र आदित्य वसु साध्य, साध्य भी एक देवताओं का वर्ग है, और विश्व अश्विनो मरुत पित्र, ये भी देवताओं से नीचे स्तर के हैं। गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध, ये सारे के सारे आपकी ओर आश्चर्य से देख रहे हैं, आपके इस रूप को ये सब आश्चर्य से देख रहे हैं। आश्चर्य शब्द है ना। सर्वे त्वाम विस्मिता विक्षमे विक्षन्ते, इसका तात्पर्य ही नहीं है। तो 23 श्लोक कल से करेंगे, ठीक है? अब कोई आपका प्रश्न जिज्ञासा है क्या? कहते हैं पूरी गीता तो भगवान ने बताई 45 मिनट में, उसके बीच में ये दर्शन भी हो गया, क्योंकि ये तो 10वें अध्याय के बाद दिखाई है। ये झलक ऐसे है, उसमें सब कुछ देख लिया। ये इसको कितने समय में अर्जुन ने इसको देखा। देखिए देव, ये रूप पहले तो ये दिव्य रूप है, और देवताओं का एक क्षण होता है, हमारे 6 महीने हो जाते हैं, एक दिन उनका हमारे 6 महीने है, तो देवताओं के समझ लो कि 10 मिनट में देखा होगा, 10 मिनट तो देवताओं के 5 मिनट भी नहीं है, क्योंकि दिव्य रूप था। तो हमारे वहां कितना समय बीता होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, तो 1 सेकंड में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। इस रूप को अर्जुन देखता रहे तब तक तो वो मर ही चुके थे सारे। हरे कृष्ण। तो हाँ जी, क्या प्रश्न है?
जैसे बोले कि चंद्रमा क्षय हो जाता है श्राद्ध,
हाँ जी,
वहाँ स्नान करते हैं चंद्रमा, वो समुद्र में है कि वहाँ?
समुद्र में स्नान करते हैं जाके। इसी के लिए ये यदुवंशी जब कहते हैं, उद्धव कह रहा है कि समुद्र में जब चंद्रमा स्नान करता है ना, तो दूसरी मछलियां समझती हैं ये भी हम जैसी कोई मछली चमक रही है, ऐसे हम श्री कृष्ण को समझ रहे थे कि हम जैसा कोई यदुवंशी है। आज वो जब चला गया है तब हमको लगता है कि हम उसको समझ नहीं सके, ये उद्धव कह रहा है। वो उदाहरण उस चंद्रमा का दे रहा है जो उसी प्रभास क्षेत्र में जब नहाता था तो दूसरी मछलियां समझती एक हमारे जैसी मछली है, वो ये नहीं समझती कि ये चंद्रमा। एक है ना श्लोक ऐसा याद है भागवत में, वो इसी का उदाहरण है। चलो 11वां अध्याय अभी तो खैर, इसके बाद थोड़ा सिद्धांतित श्लोक हैं, ये काल रूप हो जाएगा, फिर अर्जुन की प्रार्थना मुख्य है, और फिर भक्ति वाला अर्जुन की प्रार्थना है, भगवान का चतुर्भुज रूप, फिर अंतिम भाग में टाइम लगेगा, अभी 4 क्लासें तो होंगी कम से कम। अब कितना हुआ है? 23 हुआ है ना, अभी तो 40 है ना, कल करें या परसों करें? एक तो करनी है, कल करो परसों करो आपकी मर्जी, कल बरसात होगी तो नहीं करें, नहीं तो परसों करेंगे, होगा तो नहीं करेंगे परसों करेंगे, इसमें क्या है?